इधर जो महाराज अर्जुन के यहां एक अमृत का कुआ था, वैसे तो वहां पहरा रहता था, लेकिन जब जवान परीक्षित होता है तो अपने पिता से कहने लगा कि हे पिताजी, हमें अमृत के कुआ पर पहरेदार बना करके बिठाइए, हम एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। अर्जुन कहने लगे, तुम्हें क्या जरूरत है परीक्षित, तुम न जाओ कुआ पर। जवाब दिया नहीं। अर्जुन से कहा कि हे बाबा, हमें जाना है और कुआ पर जाकर के हमें कुआ की रक्षा करनी है, जल को कहीं भी व्यर्थ नहीं जाना है। तो हट करने से कुंती नंदन कहने लगे, अब नहीं मानते हो तो चले जाओ। याद रखना, इधर तो परीक्षित उस कुआ का पहरा देने लगा और इधर क्या हुआ,
परयोगिन बल दे गई
रखना दोस्तों, इधर तो नवल दे जिस समय यौवन की दहलीज पर कदम रखती है, घड़ा जल का भर के आटा पर ले जाती है और आटा पर ले जा करके दोस्तों आज स्नान करने लगी। देखिए,
स्नान करन ऋतुमंती चढ़ गई चित्तर सारी पे,
क्या किया,
कर ली ने स्नान बिसरियो ज्ञान कर्म गति छाई, अरे चौ महिला पे बिटिया रे के रही गदा चलवाई।
सूरत की वो लड़की अटा पर खड़ी हुई थी दोस्तों, इधर पुरवाई की हवा जरा मंद पड़ी और जो पश्चिम का झकोरा आया, चादर उड़ गई, पूरा बदन उसका खुल गया। इधर क्या हुआ,
अरे बासिक कर बंद कचहरी,
thank you। छाए रही है धीरे धीरे, और बासिक ने निगाह घुमाए रही है धीरे धीरे। जो उसकी निगाह ऊपर गई, बासिक ने जब ऊपर को पंचो निगाह यारे उठाई, हाय हाय, और जो महला बहपर यही जाके बिटिया यारे लखाई। क्या हुआ दोस्तों, जो अपनी लड़की को देखा है नागराज ने, हाय हाय, महाराज ललित को देखो सुंदर अंग, ओ काम विवश हो गयो भाई जब बासिक की मत भंग। जा तो जोवन में भरपूर खून सी दुल्हन आए गई है, जा तो जोवन में भरपूर कैसे दिन चलाए, जा तो जोवन में भरपूर नशा में बोली आए। हमारे महलों की छत पर यह हूर की परी, हाय हाय, एक ही नजर में इसने मुझे अपनी आत्मा को गुलाम बना लिया। दोस्तों देखिए, बाप की नजर बेटी पर जो गलत हुई है, क्या दशा हुई। जग तन से फूटो कोड़ काप जाओ, आगम कर घबरा गया और महलों में जाकर के पहुंचा। रानी ने एकदम से पलंग को नवा दिया, क्या कारण है महाराज, बहुत उदास नजर आ रहे हो। ये सरी से एकदम से बात से कहने लगा, ओ नागिनी मुझे एक बात बता, क्या ये कौन सी औरत है जो अट्टा पर थी अभी। जो अट्टा पर खड़ी हुई स्नान करके अपने केसों को सुखा रही थी। इतनी सुंदर है वो कि जिसको देख करके मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया, लेकिन हमारे अंदर जो पाप हुआ मेरे शरीर से कोट फूट चुका है। दोस्तों, नागिन के पैरों के तले धरती खिसक गई। नीचे को निगाह कर ली, क्यों नहीं बोल रही हो? नीचे गर्दन क्यों है तुम्हारी? कौन है ये? कोई रिश्तेदार है, मेहमान है, कहां की है? रानी कहने लगी, पिया मैं वो बात से कहने लगा, बात कैसी घुट रही है? मैं पूछ रहा हूं ये लड़की कौन है? आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं होगा, बताओ। मेरी कसम, तू औरत है पागल? मैं ये कह रहा हूं मेरे सारे शरीर से रक्त और पीप बह रहा है और तू बता नहीं रही कि सुंदरी कौन है? मैं सब कुछ बता दूंगी, मगर ना पता अज्ञात भय से मेरा हृदय हिला जा रहा है। आप मेरी कसम खाओ कि हमसे नाराज तो नहीं होगे? हाँ, नाराज नहीं होंगे, बोल। मेरी कसम, तुम्हारी कसम, बताओ।
सोने सैया के बेन लगी ओ के न काप के नारानी, जे प्रीतम तेरी बिटिया रे के ना है तुमने जानी।
तुम्हारी बेटी है क्या? कहा
रानी, क्या बोल रही हो तुम?
मैं सच कह रही हूं पिया, सच कह रही हूं। मेरी लड़की? हाँ।
अरे उम्र की बारी का सजना बारी, पिया मेरे बारी उम्र की बारी, जब प्रीतम तेरी बिटिया रे उम्र की मिलन बारी।
हमारी बेटी कब पैदा हुई है?
कहां रखा तूने इसे? मैंने तुम्हें भेद छिपाई लई तुमका, सुनो है तकारी। मैंने तुम्हें भेद छिपाई लई तुमका, सुनो है तकारी, सुनो है तकारी। मेरो करियो माप कसूर रे भूल भाई सैया भारी।
क्षमा कर दो, मैं डर के मारे अपनी बेटी की ममता के मारे मैं उसे मार भी नहीं सकी। मैं तुम्हें डर के मारे बता भी नहीं सकी कि तुम मर जाओगी।
अरे सुने पास का बहुत रे सानो, हर मेरी नारी करो गजे
जाऊं मैं? कैसे मुंह दिखाऊं सारे जमाने को? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्तों, उसी समय राजा वाशिक गर्दन को झुका के रोने लगा। मेरे शरीर से कोट छूट रहा है, पीप टपक रहा है, मक्खियां भिन भिना रही हैं। इस शरीर को तूने अधम बना दिया और नालायक औरत, अब मैं कहां जाऊं? मेरा शरीर बर्बाद हुआ वो हुआ, अर्जुन से दुश्मनी हो चुकी है। जिस दिन उसका मौका लगेगा वो अपने धोखे का एक एक बदला लेगा। रानी कहने लगी, पिया एक बात बता दूं आपको। क्या? हाथ जोड़ के नार कहे उच्चार पिया से बानी, मेरी एक अरज महाराज लेके ले वो सजना मेरी एक अरज बानी दिया। ए अर्जुन भारी भूप सुदा को कूप बनोला सानी बनोला सानी, तुम अमृत ले मंगाई पिया सो ज्ञान, तुम अमृत ले मंगाई पिया सो ज्ञान। आपका शरीर सही हो जाएगा, आप अमृत मंगा लीजिए। पारत के यहां बहुत बड़ा अमृत का कुआ है। एकदम से बात से कहने लगा, अरे नालायक औरत, उससे तो मेरी दुश्मनी हो चुकी है, मुझे अमृत नहीं मिल पाएगा। उसी समय महाराज नवलदे को बुलाया है बासक ने, जो सामने आई। बासक झपटा और अपनी बिटिया के पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो बेटी, नवलदे के ओठों से कोई जवाब नहीं आ रहा है दोस्तों, रो करके बात से कहने लगा।
अरे मोसो अधर्मी, अरे बाप बिटिया, जाने भारी जो बाप कमाओ रे।
क्या हुआ पिताजी, मेरे पैर छोड़ो ना, बताओ ना मुझे। आहा, क्या हुआ?
रोई के बासी के बोलो बिटिया आटा पे तू ले आई रे। मैंने ऊपर करी तीन घा लली मेरे दिल में पाप गाओ छाई रे। पूरी नजर बेटी पर दारी तन से कोड़ चुचाओ रे। और मेरी पाप ने और जन्म को दाहु निभाओ रे। I'm
घबराओ नहीं पिताजी, मैं तुम्हारे कोड़ को ठीक करने के लिए उद्यत हूं।
कैसे?
माताजी ने अभी बताया कि हस्तनापुर के नरेश पारत के यहां सुधा का कूप है। और पिताजी घबराओ नहीं, मैं वहां से अमृत ला करके तुम्हें निरोग बना दूंगी। बात से कहने लगा, बेटी दही के धोखे चूना चाटने की कोशिश न कर। क्यों? तुम नहीं जानती हो जो धन्वंतर जी गुरु हैं, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित लाल को उसने विद्या सिखाई है और वो हर समय उस पहरे पर उद्यत रहता है। और ये भी ध्यान रखो, वो तुझे अमृत नहीं लेने देगा और तुझे बाद में अपनी भूल का प्रायश्चित करना होगा। नवलदे कहने लगी, पिताजी उस जादूगर की तो मुझे धमकी न दो, मैं जादूगरनी कुछ कम नहीं हूं। क्या मतलब? जवाब दिया, सुनो, भगवान की अगर कृपा है तो मैं अमृत लाकर गई तुम्हें मुंह दिखाऊंगी। बात से कहने लगा, बिटिया जब बात से कने कही अधिया मेरी प्राणन से प्यारी, और अमृत लेनन दे परीक्षित राजा बलधारी। पागल मत हो जाओ, जब बासकने कही अधिया मेरी प्राणन की प्यारी, अमृत लेनन दे परीक्षित राजा बलधारी। नवल दे बोली, अरे नवल दे कहे बचन हंस के, हम अमृत ले आए पिताजी अग्नि में धस के। अरे फटत ये तुम्हें देख छाती, और तन से कोड चुचाए बहने नन से ओलाती। पिताजी अरे पिता में नागिन बन जाऊंगी, और जा पे जा जो करे दौर चुकिया में खाऊंगी, मैं नागिन बन जाऊंगी। बात से कहने लगा, बिटिया होश में रहो, अरे कुमार तो यावन ना तो गो, वो भी बहुत खिलाड़ी है। अरे ललित तो यावन ना देगो, और पुपरु अपन जाए बजाए के बेन पकड़ लेगो। अगर तू नागिन बनेगी वो सपेरा बन जाएगा। हाय हाय, अरे ललित तो यावन ना देगो, ओ पुपरुआ बन जाए पकड़ के बेन पकड़ लेगो। पिताजी बड़े डरपोंक लग रहे हो। अरे पखेरु बन के उड़ जाऊंगी, याद रखो। अरे पखेरु बन के उड़ जाऊंगी, खेरू बन के उड़ जाऊंगी। तो बासे कहने लगा, अरे पखेरू बन के उड़ जाऊंगी, पप्पू बन जाएगो बाद लली तो मुश्किल पर जाएगी। अरे पजरियो बिटिया को ही हो, और जो में तेरी धीरे देख ले तू मेरो। अमृत लेने जाए, अरे हाँ अमृत लेने जाए, राठौर चढ़ी हसी जवान लगी है एक नहीं मानी, और अमृत ले जाए चढ़ी है बिटिया को जवान लगी है एक नहीं। पागल मत हो जाओ, धनवंतर का सिकाया हुआ है। नबलदे कहने लगी, पिताजी अबे उसे किसी जादूगरनी से पाला नहीं पड़ा, तो मुझे जाने दो, मैं अमृत लेकर के ही तुम्हें मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों ध्यान रखना, आज वो बासी की लाडली जो है अमृत लेने के लिए जा रही है, और कैसे चली है, हाय हाय। लाडली जो है अमृत लेने के लिए जा रही।
धीरे धीरे चली नबल के रूप के पास में आई, यौवन में भरपूर लड़की नागिन सी लहराई जाकी, सुंदरता कैसी भरे
जिस समय अमृत के कूप के पास आती है। परीक्षित लाल हाथ में तलवार लिए हुए दूर खड़े हैं। इस लड़की ने कूप में से घड़ा भरा सर पर रख करके जिस समय यह बाला चली है, महाराज परीक्षित ने आकर के अंगारी घेर लिए, सुंदरी कौन हो तुम, बिना हमारी इजाजत के तुमने कूप में हाथ कैसे डाला, बोलती क्यों नहीं हो। दोस्तों नबलदी नीचे को नजर करके बोली, मैं पातालपुर से आई हूं, क्या नाम है तुम्हारा। मेरा नाम है नमलदे। किसकी बिटिया हो तुम। मेरे पिताजी का नाम बासिक है, उनको कोढ़ हो गया है, इसीलिए मैं अमृत लेने के लिए आई हूं। तुम बासिक की छोरी हो। हाँ बाओ भाई बाओ। आप हंसे कैसी। परीक्षित लाल कहने लगे, आपको नहीं मालूम गोरी, बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार था मुझे।
बहा पकड़ के कुमार ने लई पास बैठार, चलो हमारे संग में हस्तनापुर को नार।
हमारे साथ में चली। तुम्हारा बाप तुम्हें चौसर में हार चुका है। इतने जो वचन सुने हैं दोस्तों, मुझे ये नहीं मालूम था कि हमारा बाप मुझे सार में हार चुका है। जोरे दो हाथ सुनो पति बात, अरज एक मेरी देव अमर जलदी मोकों रे कालो मत सैया तेरी। अमर दीजिए महाराज अब कसूर शरण लई तेरी, मेरो करियो माप कसूर शरण लई तेरी। अरे बाचा भर बाई कुमर ने, और अब घेर लई नारी अरे जबर ने। अमृत ला करके दीजिए महाराज, आप हमारे पत हैं। मैं अपने बाप को अमृत दे आऊं और इन्हीं पान लौट के आती हमारी कसम तुम्हारी कसम। महाराज परीक्षित लाल ने अमृत का घड़ा दोबारा नबलदे को दिया, कहा जल्दी आना जिस समय नबलदे चली है। कहने लगी पिया एक बात बताऊं। बताओ। तुम्हारी किस्म मेरा जी नहीं चाहता कि मैं जाऊं। तुमने जाने कौन सा जादू कर दिया, अभी आती हैं लौट के। भगवान यहीं मिलना मुझे। और ये परिचित कहने लगा मैं जाऊंगा भला, मैं तेरे इंतजार में आंखें बिछाए रहूंगा। मेरी कसम तुम्हारी कसम। तो क्या बोली नबलदे,
चलती बेरा नजर भर के देख ले, चलती बेरा नजर भर के देख ले।
महाराज बाश्य को जाकर के घड़ा तो दिया, लेकिन उसकी आंखों में लोहू के कतरे। बासक ने जो स्नान किया है तो कोड़ उसका सही हो गया, कहने लगा, बेटी तूने अपनी बाप की जिंदगी को बना दिया। दांती को पीस के कहने लगी, तुम मेरे बाप नहीं हो, तुम शायद हमारे परिवार के पाप हो। मतलब, अरे मेरे बाप, जब तू मुझे बाचा में हार चुका था तो क्यों मुझे महलों में छुपा के रखा? भार में जाए तेरा राज और तू मैं चली। दोस्तों, इतना कहकर नवलदे जो है आ गई उसी घाट पर जहां पर परीक्षित उसके इंतजार में बैठे। भगवत प्रेमियों, उसी समय परीक्षित नवलदे को मुस्कुरा के देखते हैं, आ गई आ गई, चलो। अब हस्तिनापुर के लिए नवलदे को लेकर के चले हैं परीक्षित लाल।
अरे धीरे धीरे राजा चल भाई, और दे दे भमरे कलिन पे, भाई मेरे पाँव दे दे भमरे कलिन पे, भाई मेरे पाँव तो दे दे सिरियन पे।
अर्जुन के सामने जिस समय परीक्षित लाल पहुंचे कि कौन है, कहने लगे, बाबा ये वही गौरी है जिसके बारे में तुमने बाजी खेली थी। अच्छा, मैं तो पहले ही समझ गया था परीक्षित लाल के वार्षिक ने मेरे साथ धोखा किया। चलो, अब तो मंगलचार होने दीजिए। और मेरे दिल में एक यही लालसा थी कि मैं तुम्हारा विवाह बड़ी उमंग के साथ करूं। ध्यान रखना दोस्तों, अर्जुन ने चारों तरफ पत्रों को भेजा है, हेतु रिश्तेदार सभी मेहमानों को बुला करके आज परीक्षित लाल की शादी नवलदे के साथ में किस तरह होती है।
रे मंगल चार पंड दरबार खुशी अति छाई, अरे बस शोभा अमित अपार सुनो चित लाई। बैठे ऋषि अनेक विज्ञान धे विवेक रहे मुस्कियाई, वहां वेदन की धुन होत, वहां वेदन की धुन होत आधार सिहाई, वहां वेदन की धुन होत राठौर सिहाई। बहुत लेता हो हर साल
ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से परीक्षित लाल का विवाह नवलदे के साथ में हुआ। और एक बात और भी बता दें, शादी में ही द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने वहां पदार्पण किया था। हालांकि मैं एक बात और बता दें कि उस शादी में सभी मेहमानों को बहुत खुशी है, लेकिन पूरे उत्सव में महाराज मुरली मनोहर श्याम सुंदर के ओठों पर मुस्कुराहट नहीं आई। धर्मराज की निगाह जब श्याम पर पहुंचती है तो कहने लगे, हे यादव जी, कारण क्या है जो आपके ओठों पर मुस्कुराहट नहीं है? भगवान कृष्ण कहने लगे, यह हमें मत पूछो तो इसी में फायदा रहेगा, आप लोग भी चिंता में घर जाएंगे। पांचों पंडवा व्याकुल होकर कहने लगे, महाराज वो कौन सा विलक्षण पहाड़ टूटने वाला, हम लोग भी चिंता में ग्रसित हो जाएंगे। तो भगवान कहने लगे, सुनो पांडवाओं, अब कलियुग आने वाला है। कलियुग? हां, और सुनो,
अरे जब हुई है धर्म रवानो, अरे जब हुई जाइए धर्म रे रवानो, और फिर पीते वो जो हर खानो, अरे जीने में कछु नाए है ठिकानो,
हे धर्मराज, सच बात तो यह है कि अगर मेरी कही मानो तो तुम लोग अगर प्रायश्चित करना चाहते हो तो हिमालय में जाकर के गल जाओ। ए जीवन क्या है, एक मृग तृष्णा है या विश्राम नहीं पाना है? दोस्तों ध्यान रखना, इतना कहकर के भगवान कन्हैया वहां से चले हैं। 56 करोड़ जो यादव हैं उनका नाश कराया है भगवान ने, और उसी समय अर्जुन को बुला के कहा है कि देखिए यदुवंशियों का विनाश हो चुका है और तुम इन गोपिकाओं को ले जाओ, हमारा भी आने का समय, हमारा अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, गंधारन का श्राप बाकी था वो हमने श्राप पूरा किया है। कौन वक्त था ये तो मैं शायद पहले बता चुका हूं आपको।
द्वापुर का अंत समय था वो, द्वापुर का अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई थी, कलयुग की बारी आई थी, सुख सूर डूबने वाला था, सुख सूर डूबने वाला था, और दुख की अंधेरिया छाई थी, राम दुख की अंधेरिया छाई थी,
आइयो न कहो तो कह लो,
ये द्वापुर था मृत्यु सैया पर,
द्वापुर बुढ़ा होकर के मौत की सैया पर हिचकियां ले रहा है, और कलयुग
एक द्वापुर था मृत्यु सैया पर, कल बाल रूप पलने में था, कल बाल रूप पलने में था, पापों का उदय हो रहा था, पापों का उदय हो रहा था, आधार रविधन
करके पांचों पंडवा हमारे में गल गए।